जयं विष्णुपाद परमहंस प्रवीदाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जयं विष्णुपाद परमहंस प्रवीदाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ఆల్ గ్లోరిస్ట్ దేశమల్లిబట్టి హరే కృష్ణ ఆల్ గ్లోరిస్ట్ దేశమల్లిబట్టి హరే కృష్ణ ఆల్ గ్లోరిస్ట్ ఆల్ గ్లోరి శ్రీ గురు అండ్ గౌరాంగ ఆల్ గ్లోరిస్ ప్రభుపాద్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతి వ్యాస తతో జయముదిరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః హరే కృష్ణ ఆజ్ హమ్ శ్రీమద్ భాగవతం దశమ స్కంద సాత్వాధ్యాయ తృణావత్ కా వధ శ్లోక సంఖ్య 5 నందస్య పత్నీ కృతమంజనాదికం విప్రకృతాస్వాస్తయనం సుపూజితో అన్నాధ్వవాసం స్త్రగభీష్టధేనుభిః సంజాత నిద్రాఖ్యమశీష యచ్చని నందస్య పత్నీ కృతమం జనాదికం విప్రే కృత స్వస్త్యయనన సుపూజితో అన్నాధవాసాస్త్రగభీష్టధేనుభిః సంజాత నిద్రాఖ్యమశీష యచ్చని దొరై నందస్య పత్ని
Thank you.
छन्दस्य पत्नी कुतमञ्जसादिकम् विप्रेकृता स्वस्थयनं सुपूजितम् विप्रकृता माताएं नन्दस्य पत्नी कुतमञ्जसालितकम् विप्रेकृतस्वस्थजनं सुपूजिताय अन्नादवासा सगणेभिर्नुभिः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद बच्चे का स्नान उत्सव पूरा होने हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और उनके प्रचुर अन्न तथा अन्य भोजन पदार्थ वस्त्र वांछित गावे तथा मालाएं भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। ब्राह्मणों ने इस शुभ उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्रों पढ़े। जब मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ और माता यशोदा ने देखा कि बालक उनिंदा हो रहा है तो वे उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक वह शांत होकर सोना गया। तात्पर्य स्नेहमयी माता अपने बच्चे का काफी ध्यान रखती है और यह देखती रहती है कि उसका बच्चा क्षण भर भी विचलित ना हो। बच्चा जब तक माता के पास रहना चाहता है माता उसके पास रहती है और बच्चा अपने को काफी आरामदेह अनुभव करता है। माता यशोदा ने देखा कि उनका बच्चा उनिंदा हो रहा है तो उसे सोने की पूरी सुविधाएं देने के लिए वे स्वयं बालक के साथ लेट गई और जब वह शांत हो गया तो वे उठकर घर के दूसरे काम काज करने लगी। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुपिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददास्ति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम इस भगवान के इस लीला को बोलने से पहले श्रील प्रभुपाद और परमाराध्य गुरुदेव और उपस्थित महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी उपस्थित वैष्णवों के आशीर्वाद और गुरुवर्ग के आशीर्वाद चाहकर इस अध्याय के इस प्रसंग के श्लोक के बारे में मैं जो भक्तों के मुख से सुना हूँ उसे कहने के लिए प्रयास करूँगा। तो सभी भक्त कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं इस भगवान की दशम स्कंद के इस पवित्र तृणावर्त बद्ध की जो कथा है और इस श्लोक के माध्यम से भगवान की बारे में जो कथा की आवृत्ति हो रहा है उसको मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए कुछ बोल सकूं। तो इस अध्याय में सातवां अध्याय दशम स्कंद की तो यहाँ तृणाव्रत राक्षस की बद्ध के बारे में बताया गया है और सकटासुर बद्ध। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं वो जब पूतना बद्ध की लीला को सुने और उस प्रसंग के सुनने के बाद क्योंकि भगवान की जो कथा है वो अमृत तुल्य है। हम देख सकते हैं जो परीक्षित महाराज जंगल में जाकर थोड़े से प्यास को सहन नहीं कर पाए और ऋषि के गले में मृत्यु सर्प डाल दिए है वही आज भगवान की कथा को सुनने के लिए इतने आतुर है। लगातार 7 दिन 7 रात उन्होंने बिना खाए पिए उस कथा को सुन रहे। तो इससे पता चलता है कि इस कथा में कितना अमृत है जो कि उनको पोषण कर रहा था। तो इस अध्याय के तृतीय श्लोक में स्वयं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से आगे की लीलाओं के बारे में वर्णन करने के लिए आग्रह करते हुए कहते हैं, कृपया भगवान कृष्ण की अनन्य लीलाओं का वर्णन करें जो मानव की मानवी बालक का अनुकरण करके और पुतना बद्ध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने कथा सुनने की जो लालसा है उसको व्यक्त किया कि भगवान की जो कथा है उसको सुनने के लिए वो कितना आतुर है। तो इस श्रीमद् भागवतम के सतम स्कंद में जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं तो कहते हैं, स्नानत सुप्ते स्थित्यम कृष्णम सप्तमेन उदाक्षिप्त तृणाव्रत सस्नाने विश्वम मातरम मुख्यतः रदच्छद बलम व्यक्तम पोतना तस्म चुष्यने सकटंग घ्री प्राणे तु प्राणस्तु बधे बलम। तो टीका करते हुए उन्होंने कहे कि इस सप्तम अध्याय की व्याख्या में भगवान ने यहाँ स्नान के उपरांत कहते हैं कि जब माता ने स्नान कर दिया तो उन्होंने यहाँ तीन प्रकार के अपने बल को उन्होंने प्रदर्शित किया। तो कहते हैं कि उन्होंने अपना होठ का बल पुतना बद्ध करके उन्होंने अपना होठ के बल को प्रदर्शित किया। तो भगवान ने अपने होठों से ही दबाकर पुतना को मार दिया। उनके स्तन को पुतना राक्षसी के स्तन को अपने होठों में चाप कर उससे ही वो प्राण चूस लिए। और कहते हैं कि तृणाव्रत जो है आया, इस तृणाव्रत का बध उन्होंने अपने हाथों से ही कर दिया, यहाँ हाथों के बल प्रदर्शित किया। और अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाकर उन्होंने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया। और चौथा बल उन्होंने सकट भंजन लीला के द्वारा अपने पैरों के बल को उन्होंने प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार अभी जो प्रसंग चल रहा है भगवान की जो सकट भंजन लीला है उसके बारे में वह कहते हैं। तो जिस प्रकार मैं कहा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हुए कहते हैं कि इस सप्तम अध्याय में स्नान के पश्चात शयन से जाग कर श्री हरि ने बैलगाड़ी के चरणों के आघात से ऊपर उठाकर फेंकना जो है ये अपने पैरों का प्रदर्शन है। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की हर लीला जो है अत्यंत मनोहर है। तो कहते हैं कि श्री भगवान के अनन्य अवतारों की लीलाएं मनोहरणी होने पर भी कृष्ण की बाल लीलाएं मुझे अतिशय प्रलोभित कर रही है, अतः उनका ही वर्णन कीजिए। इस अभिप्राय से कह रहे हैं जेन जेन अर्थात भगवान के मस्त्य आदि अवतारों के जो समस्त लीलाएं करते हैं वे सभी मनमोहक मनोहर कर्णमयी अर्थात कानों के लिए आस्वादनीय है। तो इस अध्याय जैसे शुरू होता है, श्री श्री राधारास बिहारी ललिता विशाखा श्री सीताराम लक्ष्मण वर्तमान श्री श्री गौरनिता इसल प्रभुपाद की जय। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये अध्याय शुरू में जो टीका करते हैं उसमें कहते हैं तो कि जैन जैन शब्द जो पहले श्लोक में आता है उसमें वो टीका करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे मैं पूर्व काल में हम मैंने भगवान के अनेक लीलाओं के अनेक अवतारों की कथा को मैं सुना हूं, वो तो अत्यंत मनोहर है, जो मन को आकर्षित करने वाला है, लेकिन मैं अभी जब इस दशम स्कंद में हम जब प्रवेश किए और यहाँ जब इस भगवान कृष्ण की जो बाल्य लीला है ये अत्यंत मनोहर है, इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को आग्रह प्रकट किया कि पूतनाबद्ध के बाद आगे की लीलाओं को भगवान की बाल्य लीलाओं को वर्णन करे, जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी ने चौथे श्लोक से उन्होंने भगवान की सकट भंजन लीला को प्रस्तुत किया। तो इस श्रीमद् भागवतम के इस दशम स्कंद में ही वर्णन आता है कि भगवान इस धराधाम में आकर जितने भी लीला करते हैं ये मनुष्य जैसे लीला करते हैं वो किस लिए ना कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानं मानुषितनुम माश्रितं भजन्ते तादृशा क्रीड़ा यत् श्रुत्वा तत्परभवे, कि अपने भक्तों को अनुग्रह करके और स्वयं मानुषितनुम आश्रितम मनुष्य शरीर तो धारण किए है, भगवान की स्वरूप जो है भगवत गीता में भी भगवान कहे के अवजानंति मामूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भाव अजानंति मम भूत महेश्वरम, के मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में इस धरती पे आता हूं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान की जो इस मनुष्य लीला है या मनुष्य शरीर में प्राकट्य होना ये भक्तों के लिए अनुग्रह है, भक्तों के ऊपर कृपा है, लेकिन मूर्ख जो भगवान की लीला या भगवान की ये मम भूत महेश्वरम जो भगवान की इस परता को नहीं जानते वो क्या सोचते हैं भगवान कैसे है ना हमारे समान एक साधारण है और हम जैसे कार्यकलाप करते हैं और भगवान हम कोई ऐसे देखा जाए कोई भी ऐसे श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा भौतिक व्यक्ति वो भगवान की लीलाओं को देखकर वो ऐसे ही समझेगा, क्योंकि भगवान की जितने भी लीला है ऐसे कि कोई कोई लीला को छोड़ देने के बाद ये राक्षसों का वध या गोवर्धन धारण करना इनको छोड़ दिया जाए तो गोपियों के साथ लीला और माता के साथ जैसे एक बचपन में जैसे व्यवहार है भगवान का वो लीलाओं को कोई सुनेगा या पढ़ेगा तो सोचेगा ये तो हमारे जैसे ही है। तो लेकिन जो भक्त होते हैं जो भगवत कृपा आश्रित है वैष्णव की कृपा से पंडित है वो भगवान की इन लीला कथाओं को वो ग्रहण करके उससे वो अनुग्रह ताको आस्वादन करते हैं कि भगवान की जो अनुकंपा है भक्तों के ऊपर भक्त भगवान के इन लीलाओं को पढ़कर सुनकर वो समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो श्लोक आया अनुग्रहानं भक्तानं मानुषित्वनुमाश्रितम् तो भजन्ति तादृशा क्रीड़ा के मनुष्य के समान ही कार्य करते हैं लेकिन फिर भी अंतर है मनुष्य के कार्य में और भगवान के कार्य में। अगर हम कोई साधारण व्यक्ति के जीवन की जीवन चरित्र सुने या कोई सिनेमा देखे या किसी सिनेमा गाना सुने तो क्या होगा उससे हम बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान की ये जो क्रीड़ाएं हैं जो भजन्ति तादृशा क्रीड़ा मनुष्य जैसे क्रीड़ा है कार्यकलाप है तो क्या करता है तो कहते हैं जो श्रुत्वा तत्पर भवे जो सुनता है केवल भगवान के बारे में श्रवण करने से क्या होता है नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कि केवल सुनने मात्र से ही भगवान की लीलाओं को हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होता है। ऐसे भौतिक जगत में भी हम किसके प्रति किसका गुणगान सुनते हैं उसके प्रति भी हमारा अलग अलग भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसमें हम बंध जाते हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं को सुनने से, वो तो दिव्य है, वो तो हमको जत श्रुत्वा तत् परभवे इस जगत से मुक्ति दिलाता है। इसलिए भगवान की भले ही ये मानुषी तनु धारण करके जो मानुषी मनुष्य के समान जो लीला है इसको भी अगर हम सुनते हैं तो हमारा ये हमारे भक्ति को पोषण करता है। हम जब इन भगवान की हर लीला हमारे लिए ये भव औषधि के समान है जो कि हमारे हृदय की भव रोग को दूर करता है। इसलिए भगवान की जो कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, केवल प्रविष्ट करने से कर्ण रंध्र से रंध्र में वो हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। इसलिए यहां परीक्षित महाराज जब भगवान के इन लीलाओं को सुनने के लिए आग्रह प्रकाश किए तो सुखदेव गोस्वामी ने इस सकट भंजन लीला को प्रतिपादन करते हुए उन्होंने चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ये उत्सव में जैसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है, बालक के ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव के मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का जोग था। इस महोत्सव के माता यशोदा के ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायक के सहयोग से संपन्न किया। तो यहाँ इस श्लोक में जो कहा गया है भगवान की जो इस उत्सव जो मनाया गया इस उत्सव को उत्थान उत्सव कहते हैं। या देखा जाए तो हम जब संस्कार जो हमारा 16 संस्कार है उसमें संस्कार में देखे तो 3 मास में कौन से संस्कार होता है, तो निष्कर्मण्य संस्कार, जिसमें बच्चे को पहली बार, यहां भी अनुवाद में लिखा है पहली बार बच्चे को बाहर लाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये शायद निष्कर्मण्य ही संस्कार का ही विधि होगा। और आचार्य लोग टीका करके हुए कहते हैं कि ये जो भगवान का उस दिन माता यशोदा ने स्नान करा के उनके उत्सव मनाया तो इसमें आचार्य कहते हैं कि जब पहली बार बच्चा जन्म होता है तो उसका जन्म उत्सव जो है हर महीने में मनाया जाता है। तो जिस नक्षत्र में वो जन्म हुआ था उस नक्षत्र में प्रायतः मनाते हैं। तो इस प्रकार जिस दिन ये उत्सव मनाया गया उसी दिन भगवान की जो पैदा हुए थे, कहते हैं कि चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का जोग था। तो हम देख सकते हैं भगवान की अनेक उत्सव हुआ है। जब हम काल्य दमन लीला देखते हैं उसमें बलराम जी काल्य दमन के लीला के दिन नहीं गए थे क्योंकि उस दिन उनका जन्म नक्षत्र था। तो इससे पता चलता है कि जब भी भगवान या बलराम जी के जन्म नक्षत्र होता था उसी दिन एक उत्सव होता था, जिसके कारण भगवान कृष्ण और बलराम को उस दिन घर में रहना पड़ता था और उनको अच्छे से सजा डजा कर और उनके कल्याण के लिए, भगवान तो सबकी कल्याण करते हैं लेकिन भक्तों का भाव है तो भगवान को भी भक्त लोग आशीर्वाद देते हैं, हाँ तो भगवान भी उससे खुश होते हैं। तो उसी दिन ब्राह्मण वैष्णव को बुलाकर गोदान आदि सब क्रिया करते हैं। यहां भी हम देखेंगे, आज के श्लोक में भी वर्णन आया है कि जब ऐसे भगवान को माता कहते हैं कि आज के श्लोक में बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और उनके प्रचुर अन्न तथा अन्य भोजन पदार्थ वस्त्र वांछित गो तथा माला वे भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। तो भगवान की जन्म, जब जन्म कथा भी देखते हैं तो वहां भी नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अनेक गोदान की। तो जब भी हम प्रसंग आता है ऐसे महोत्सव का भागवतम में देखते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और गाय आदि दान दिया जाता है, वस्त्र दान दिया जाता है। तो भगवान की जितने भी कार्य होता था, तो यहाँ चौथा नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो महोत्सव मनाया गया उस महोत्सव में अनेक प्रकार के ब्राह्मण आए थे जो वैदिक मंत्र गान कर रहे थे और भगवान की जो है पेशेवर गायक आए थे। जैसे हम भी देखते हैं मंदिर में जब हमारा कहीं उत्सव होता है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा या नित्यानंद त्रयोदशी, उसी दिन हम लोग ब्राह्मण जो है वो अंदर मंत्र पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। आज के श्लोक में आया स्वस्ति स्वस्तयना, तो स्वस्ति इसमें आचार्य लोग कहते हैं स्वस्ति वाचना, जो स्वस्ति वाचन हम पढ़ते हैं, स्वस्ति नो गोविंद, स्वस्ति नो अच्युतानंद, हाँ तो ऐसे ही मंत्र पाठ स्वस्ति वाचन जो कि मंगल मंत्र है, जिससे भगवान या भक्तों के कल्याण के लिए इस मंत्र को, वैदिक मंत्र को ब्राह्मण उच्चारण करते हैं। तो हमारे मंदिर में भी पेशेवर गायक है, तो जब भगवान की उत्सव होता है पेशेवर जो गायक है, कीर्तनिया है, वो भी कीर्तन करते हैं। तो ये पहले से ही चालू है प्रथा। तो और भगवान जब तक रहेंगे, भगवान का क्या बोलते हैं, ये जो नित्य लीला है, हाँ ये नित्य लीला, जैसे भगवान की गोलोक धाम में नित्य लीला चलता है, तो प्रभुपाद जी जहां एक मंदिर खड़ा कर देते हैं वो नित्य लीला चलता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मरे, कोई जिए, कोई कोरोना आए, कुछ भी आए, भगवान की जो नित्य लीला है वो अंदर कभी बंद नहीं होता है। हाँ हम ये देखे हैं, हम सब जब भक्त लोग कोरोना में पूरा लॉकडाउन हो गया फिर भी यहाँ भगवान की सेवा पूजा बंद नहीं था। तो भगवान की जो नित्य लीला है ये अनादिकाल से चलती आ रही है। तो ऐसे ही माता ने भगवान के उत्सव को इस प्रकार से मना रहे थे, तो कितना महत्वपूर्ण है ये संस्कार, इससे भी पता चलता है कि भगवान के हर एक संस्कार को किया गया। जितने भी हमारा सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार है, भगवान के हर एक जात, हम पहले पढ़े जब भगवान का जन्म हुआ तो जातकरण संस्कार हुआ था, फिर ऐसे अनेक संस्कार है, तो आगे जाकर नामकरण आदि संस्कार हुआ, ऐसे होकर एक एक संस्कार को जो करते हैं। आज भी भारत में अनेक जगह, अनेक गांव में चले जाइए आप, हाँ बॉम्बे आदि शहरों में ये सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम सब प्राय, हम सब गांव से हैं तो हम जानते हैं कि हम घर में देखे होंगे। और आजकल तो पहले क्या जॉइंट फैमिली होता था, तो ये सब हमारा भी जॉइंट फैमिली है, तो हमको अनुभूति हम देखे हैं ये सब। ये संस्कार चाहे एक कुल परंपरा आ जाता है, तो कुल परंपरा से ये संस्कार चली आता है, भले वो शास्त्र परंपरा को नहीं फॉलो करे, शास्त्र में है लेकिन वो शास्त्र को बिना पकड़े लेकिन कुल परंपरा को पकड़े हैं। तो आज भी कुल परंपरा को पकड़ के लोग इस बच्चे पैदा होने से लेकर सभी प्रकार के संस्कार बिना जाने ही कर लेते हैं, क्योंकि ये कुल से चले आ रहा है तो वो करते आते हैं। और कुछ कुछ कार्य भी होता है जो ऐसे ही कुल से चला आता है। कहते हैं ना, एक बार कोई शादी हो रहा था, तो शादी के समय एक घर में एक टोकरी में एक बिल्ली को बंद करके रखे थे। तो उसको पूछा गया क्यों बंद किया गया, ना पहले कि हमारा घर में ये बिल्ली को बंद करके रखे थे, हमारा बाप दादा ने जब भी शादी होता था बिल्ली पकड़ कर ला के दूसरे, तो वो परंपरा चल रहा था, लेकिन वास्तविक था कि पहले वो बिल्ली परेशान कर रहा था, उसको शादी के दिन बंद कर दिया था, लेकिन उसको पकड़ के वो चले थे। तो कभी कभी ये हो जाता है, गलत फहमी में ऐसे परंपरा चल जाता है, लेकिन जो परंपरा ज्यादा कारण संस्कार बच्चे के पैदा होने से लेकर ये सब संस्कार चलता है, चाहे वो शास्त्रों को नहीं जानते हैं फिर भी अनजाने में वो शास्त्रों के अनेक अंगों को वो पालन कर लेते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म का देन है हमारे ऊपर। ये विदेशों में या जो अलग धर्म में ये पाया नहीं जाता है, लेकिन कुल परंपरा में ये जो प्रथा चल रहा है आज भी अनेक जगह ये मिलता है। तो इसी प्रकार ये भगवान के भी इस परंपरा जो के साथ उन्होंने भगवान के ऐसे उत्सव को मनाया और अनेक गोप गोपियों को बुलाया गया, यहां तक कि कहते हैं कि माँ यशोदा ने पूरा ब्रज के सभी गोपियों को बुलाया। और एक जगह आचार्य लोग कहते हैं कि कुछ गोपियां नहीं आए थे, वो घर को देखभाल करने के लिए रुक गए थे, तो मैया यशोदा ने कुछ गोपियों को भेजा, बोला उनको भी बुला के लाओ, किस चोर से वो डर रहे हैं, यहां तो सबसे बड़ा चोर मेरे घर में है जो सबकी चित्त चुराता है। हाँ, तो हम भी देखते हैं चोराग्रमण्य पुरुषम नमामि, भगवान सबसे बड़े चोर है। इसलिए उस उत्सव में भगवान के उस उत्सव में सभी प्रकार के ब्रजवासी एकत्र हुए थे। अनेक प्रकार की जब भी ऐसा प्रथा है कि जब भी कोई उत्सव में जाता है खाली हाथ नहीं जाता है, तो अनेक प्रकार की भेंट लेके गए, अनेक प्रकार के मंगल गान हुआ, मंगल वाद्य बजने लगे भगवान के मंगल के लिए, और भगवान के जो प्रसिद्ध उत्सव को मनाते हो उनको अच्छा से स्नान कराया गया और यज्ञ हुआ। आजकल जब भी जन्मोत्सव करते हैं हम केक में मोमबत्ती जलाकर फूंक मारते हैं, और फूंक मारने से महाप्रसाद गिरता है फिर लोगों को बांटते हैं, लेकिन पहले जमाने में महाप्रसाद खाते थे, लेकिन आजकल लोग महाप्रसाद देते हैं दूसरे को। तो हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है जन्म उत्सव जब भी हो क्या है कि हम भगवान के उपासना करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की खुशी के लिए। तो वही हो रहा था भगवान के लिए, बड़े बड़े ब्राह्मण को बुलाया गया, यज्ञ हुआ। कहते हैं यज्ञ के बाद हमारा भी जब मंदिर नया मंदिर उत्पन्न होता है तो हम भक्त लोग जो आते हैं यज्ञ करते हैं, फिर कलश में मंत्र पूरित जल आता है, जो कलश बिठाते हैं उसमें भगवान के आह्वान होता है, मंत्र उच्चारण करके उसमें भगवान को बुलाया जाता है, फिर भगवान की जल से ही भगवान को ही स्नान कराया जाता है, तो वो मंत्र पूरित जल। तो ऐसे ही आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान की भी उसी दिन ऐसे ही अनेक प्रकार की विधि विधान से यज्ञ हुआ, मंगल वाद्य मंगल गान हुआ, और मंत्र पूरित जल से भगवान को अभिषेक कराया गया, और उसके बाद भगवान को गो रचना, ये सारी विधियां जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं जाते हैं जब प्रतिष्ठा के लिए, मेरे को वही आंख में आ रहा था कि हम भगवान को तिलक करते गोरचना से किस प्रकार, सब प्रकार के वहां जो वर्णन है वो हम कर रहे हैं, वो थोड़ा हम महसूस हो रहा था। तो इसी प्रकार भगवान के भी ये जो आज भी लोग करते हैं, तो भगवान का भी ये सब कार्य जो है भगवान के मंगल के लिए माता यशोदा सब कार्य किए। तो आप देख, हम लोग देखे हैं कि जब बच्चे को स्नान कराया जाता है उसके बाद वो थोड़ा सुस्ती आ जाता है, फिर वो नींद लेना शुरू करता है। हम देखे बचपन में जब भी क्योंकि मेरे बाद मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, तो मैं देखा हूं कि जब भी स्नान होता था या मेरे बुआ के बच्चे लोग हैं उनको भी देखा हूं कि स्नान होने के बाद वो थोड़ा अनिद्रा, यहाँ जो उनिंदा लिखा गया है, थोड़ा नींद आता है, आग बंद करना चालू हो जाता है। तो ऐसे फिर माता भी देखें कि कृष्ण जो है उसी समय क्या हो रहे, उनिंदा हो रहे, उनको नींद आ रहा है। तो ये देखकर माता यशोदा ने क्या किए, तो आगे के श्लोक में वर्णन है किस प्रकार माता ने लेकर उन्हें, तो अन्यत्र आचार्य लोग कहते हैं कि बड़े से, क्योंकि नंद महाराज का घर है तो छोटा मोटा नहीं होगा, कहीं कोना होगा, तो बहुत बड़ा विस्तार आंगन था जहां एक कोने में एक सकट था और उसके ऊपर अनेक प्रकार की दधि दूध के मटके थे और उसके साथ नीचे एक पालना था जहां माता यशोदा ने भगवान को लेकर स्वयं वहां गई और बहुत सतर्कता पूर्वक सनी सनी एक टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका करते हुए कहते हैं धीरे धीरे वो जाकर उनको धीरे से भगवान को सुलाई और साथ में, आप देखे होंगे जब माताएं आज भी बच्चे को, आज की बात अलग है, माता लोग बच्चा तो जन्म दिला देते हैं लेकिन उसका पालन पोषण कौन करता है, एक काम वाली को रखते हैं पेमेंट देके, क्योंकि उनको काम पे जाना है। तो ये हमारे आज समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि बच्चा पैदा होने से ही वो माँ के स्नेह से दूर हो जाता है। तो यहां देखते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं स्नेहमयी माता अपने बच्चे का काफी ध्यान रखता है और यह देखते रहते हैं कि उनका बच्चा क्षण भर भी विचलित ना हो। आज के जमाने में ये लागू नहीं होता, लोग आज ये नहीं करते, लागू होता है लेकिन नहीं करते हैं। वो तो किस प्रकार धन कमाओ, बच्चा पैदा कर देना है उनके लिए सबसे बड़ा बात है, कहीं उसका पालन पोषण नहीं होता है। तो बचपन में आयुर्वेदिक शास्त्र में कहा जाता है कि बच्चा पैदा होने से मां के स्तन की दूध पीना चाहिए, जिससे उसका पौष्टिक बढ़ता है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है और कई प्रकार के बीमार नहीं आते। लेकिन जो अंग्रेजी दवाई ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर है वो लोग कहते हैं नहीं, तुरंत माँ के दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं उनका मार्केटिंग बंद हो जाएगा। हाँ, हॉर्लिक्स या जो भी पाउडर है वो कैसे चलेगा। तो पहले जमाने में नहीं था, आयुर्वेदिक शास्त्र जो है ये बताता है कि हम देखते हैं कि माता का स्नेह पुत्र के प्रति इतना होता है कि हम कई जगह भागवत में पढ़ते हैं, जब माता कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेही हो जाता था स्वतः उनके स्तनों में दूध आ जाता और पूरा शरीर उनका भीग जाता था। और ऐसे हम देखे भी है कि ऐसा हुआ होता है, लेकिन आजकल ऐसे आप, इसलिए कई बार हम भक्तों के मुख से सुनते हैं ये भागवतम गांव वाले ही समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ सब जो भी बताया गया है वो सब देखे हैं हम लोग। इसलिए जो माँ का स्नेह है बच्चे के प्रति वो सबसे बड़ा है। माता का स्नेह पिता की स्नेह से कई गुना ज्यादा है। तो नीति शास्त्र कहते नास्ति मातृ समच्छाया नास्त्रि मातृ समगति नास्त्रि मातृ समत्राण नास्ति मातृ समप्रिय। कहते माता के समान कोई
छाया नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है। यहां तक कि पशुओं में भी यह भाव होता है, एक पशु में भी इतना आप अपने संतान के प्रति स्नेह रहता है कि वो बिना खाए अपने बच्चे को खिलाता है। कहीं घूम घूम के एक चिड़िया जाता है, कहीं से एक दाना लाता है, हाँ, और अपने बच्चे के मुख में डाल देता है। लेकिन आजकल के माता पिता बच्चे को घर छोड़ के चले जाते हैं। एक न्यूज आया था बीच में कि घर पे छोड़ के गए, जिस नौकरान को रखे थे उसको चप्पल से मार रहा है, बच्चे को लात मार रहा है, फिर केस किया। इतने इससे देखा जाता है आजकल के माँ का बच्चे के प्रति जितना प्रेम नहीं है, उससे ज्यादा प्रेम क्या है, धन में है। इसलिए बच्चे को छोड़ के धन कमाने चले जाते हैं। तो माता की संरक्षण में रहकर बच्चा जितना अपने आप को सुरक्षित मानता है, वो और किसके संरक्षण में। जब भी हम देखते हैं, हम जब भी हम गिर जाते हैं या ठोकर लगते हैं, किसका मुख में नाम आता है, माँ। तो ये माँ जो है, तो प्रभुपाद जी और चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य में लिखते हैं कि माँ दो प्रकार की है, माँ यानी माया भी है। तो जो माँ अपने बच्चे को कृष्ण से दूर करता है वो माँ नहीं, क्या है, माया है। इसलिए इससे भी बचना चाहिए। कभी कभी बच्चे के प्रति माँ का स्नेह इतना होता है कि बच्चा माँ को छोड़ना नहीं चाहता और माँ बच्चे को नहीं छोड़ सकता है। तो ये भी हमारा कृष्ण के और आने के लिए बाधक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तो हमें शरीर देने वाली माता है। जो जो माता है, पिता हम सो जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार क्षाम यदुरे बचा। जो परम पिता परम माता है, जिनको हम अनादिकाल से भूल गए, जो इतने स्नेही है कि हर जगह हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हर जोनी में हमारे साथ रहते हैं। हाँ, हम जहां जाते भगवान हमारे साथ, परमात्मा के साथ तौर पे हमारे साथ जाते हैं। उस माता को, उस भगवान को हम भूल चुके हैं। हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग आते हैं आश्रम जन करने के लिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद कोई इतने माता के प्रति स्नेही होते हैं, माता के प्रति ना प्रेम होता है कि फिर छोड़ के उनको जाना पड़ता है। ये भी बाधक है एक दृष्टि से। इसलिए माता का स्नेह जो है बच्चे के प्रति, जो बहुत प्रगाढ़ होता है। माता कुछ भी करके अपने बच्चे को संरक्षण देते हैं। इसलिए माता अपने बच्चे को स्नान पान करा के, उसके यहाँ जैसे वर्णन है कि उनकी सुरक्षा करते हुए, भगवान की जैसे नींद से जाग ना जाए ये ध्यान रखते हुए उनको सुलाए, उनको अपना स्तन पान कराते थे सुधा माता। आज के जमाने में माता नहीं चाहते अपना स्तन पान कराए बच्चे को, इसलिए बोतल पकड़ा देते हैं। हाँ, तो इतना बोतल पकड़ाने का कारण, एक मराठी अभंगकार एक वर्णन करते हैं कि इतना आसक्त हो जाता है बच्चा, जब माता बोतल दूध का बोतल पकड़ाता है वो बोतल पकड़ते ही रहता है, कभी नहीं छोड़ता है। तो कहते हैं कि जब बचपन का दूध का बोतल छूटता है तो उसके बाद पहला क्लास शुरू होने से हाथ में पानी का बोतल आ जाता है, और जब मध्यम क्लास में प्रवेश करता है तो उसके हाथ में ठंडा का बोतल आ जाता है, और उसके बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है उसके हाथ पर बियर का बोतल आता है, फिर जब वो नौकरी करने लगता है तो फिर देसी दारू का बोतल। हाँ, कहते हैं कि देसी दारू का आप दारू पी पी के कहते आंतड़ी फाट ली, उसका आंत ही फट जाता है। और कहते हैं कि फिर वो जब अंग्रेजी पीता है तब जेब हाट ली, जेब का माल सब खाली हो जाता है, और अंतिम में क्या होता है, सालाइन बाट ली, वृद्ध समय में सालान का बाटली चढ़ाना पड़ता है। फिर इतने में बाटली छूटता नहीं तो आखिरी में कहते हैं कि जब वो श्मशान में चिता के ऊपर होता है तो वहां भी रॉकल की बाटली दिया जाता है। तो बाटली पकड़ पकड़ कर उसका जीवन बाटला बन जाता है। इसलिए स्नेहमयी जो माता है, वो जो माता की स्नेह किससे पता चलता है? आजकल संतान में मां बाप के प्रति प्रेम क्यों अभाव है, इसका कारण भी मां बाप है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने बच्चे को दूर कर दिया। वो जो स्नेह ददाति प्रति घृणाति होता है, हाँ एक तरफ ही नहीं होता है। माता जब स्नेह दिया होगा तभी वो बच्चा से स्नेह प्राप्त कर पाएगा। आजकल तो बचपन से ही बच्चे को त्याग कर वो नौकरी में चले जाते हैं, तो वो दाई संभालती है, तो किस प्रकार वो बच्चा माँ के स्नेह को वो महसूस कर पाएगा? तो स्नेह जब माँ के गोद में जब बच्चा रहता है, माँ की स्तन पान करता है, माँ की हाथों से खाता है, माँ की दुलार प्राप्त करता है, उसी समय बच्चे को जो स्नेह मिलता है वो स्नेह सबसे बड़ा स्नेह है। वही स्नेह को माँ फिर वापस जब वृद्धावस्था में पुत्र से प्राप्त करता है। लेकिन आज सब चाहते हैं हमको बच्चा पालन करे, पोषण करे, हमारा बच्चा हमें बड़ा होकर देखभाल करे, लेकिन हम बचपन में उसका कोई देखभाल नहीं करेंगे। वो सोचते पैसा कमा के लाके उसको दूध का बाटली दे देना ही हमारा देखभाल है। वास्तविक का माँ जो है वो बच्चे के पास रहता है, वो बच्चे का हर क्षण हर पल वो उसका ध्यान रखता है, ये माँ का कर्तव्य है। तो इन श्लोकों में हम यशोदा माता की गुणों से देख सकते हैं, ये माताओं के लिए शिक्षा है, किस प्रकार बच्चे के प्रति प्रेम हो। तो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो था ये तो स्वयं भगवान के प्रति था, लेकिन वही माता का अगर आजकल के माता का अगर अपने बच्चों के प्रति भी ऐसे ज्यादा प्रेम होना भी खतरनाक है। तो बच्चे की प्रेम में पड़ गए तो वो भी खतरनाक है। कृष्ण अगर किसका बच्चा हुआ या किसका बच्चा वैष्णव हुआ और उसके प्रति प्रेम आ गया तो उसका कल्याण है, नहीं तो फिर ऐसे ही कोई टपोरी पैदा हो गया आतंकवादी, हाँ तो क्या होगा? उसके प्रति अगर आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमको कहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए माता का ये भी कर्तव्य है कि अपने बच्चे को वैष्णव बनाए, भक्त बनाए। तो इसलिए हमारे उड़ीसा में एक कथा है, एक राजपुत्र का जिनका नाम था गोविंद चंद्र, बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन उनके माता ने उनको प्रेरणा दिया कि तुम जाओ भगवान की भजन करो। ऐसा माता दुर्लभ है जो अपने संतान को भगवान की सेवा में लगा दे। तो कहते हैं कि भजू की नाराम नाम भजी न पारिले कुल चंद्र मारे बांधी न काला जमा। के भजन कर राम नाम का, अगर नहीं भजन करेगा क्या होगा? बांध के ले जाएगा काल जमा। कहते बाछी ने बा कंचा रखी बा पाचला से बड़ा दारुण दुख। कहते जो कच्चा कच्चा चीज है वो पहले ले लेते हैं और पका छोड़ देते हैं, इसलिए तुमको पहले लेके जाएगा, इसलिए उन तैयार करो। कहते सही काल जमो बड़ा दारुण रे नाजण ही दुख सुख। वो काल जम बड़ा ही दुर्दयी है, वो दुख सुख नहीं जानते हैं। तो ऐसे माता का प्राप्त होना एक संतान के लिए दुर्लभ है, और वैष्णव संतान भी प्राप्त करना वो माता के लिए दुर्लभ है। हम लोग का अनुभूति है सबका कि किसका माँ बाप ने स्व खुशी से जाओ ज्वाइन कर लो बोले, लेकिन अभी हमारा कर्तव्य है, हम वैष्णव मार्ग में आ गए तो हमारा कर्तव्य, शायद मैं तो वैष्णव बना नहीं, आप सब वैष्णव बने, तो आप लोग का कर्तव्य है कि आपके माँ बाप को अगर वो वैष्णव है अच्छा है, अगर नहीं बने तो उनको वैष्णव बनाना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए आप सब वैष्णव भक्त आशीर्वाद करें, हम भी वैष्णव बने और हमारा जीवन को साथ करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम की, दाय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जिस प्रकार से अलग अलग मंत्र उच्चारण करके भगवान के अलग अलग अंगों पर स्पर्श करके शुद्धिकरण किया गया है, जो भी प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे आप बताए स्वस्ति वाचन मंत्र होता है, तो ये तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मंत्र होते तो इस संस्कार में इस प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। अगर कोई गृहस्थ है और उसको ये सब मंत्र नहीं पता है लेकिन संस्कारों से करवाना है या करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? जैसे कि हम कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र सभी कलमशों का नाश करता है, कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, चेतो दर्पण मार्जनम करता है, तो क्या हर जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस चीज का किया जा सकता है?
सभी मंत्र का सार है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर किसको ज्ञान नहीं है, एक तो ब्राह्मण को जो भी संस्कार किया जाता है ब्राह्मण को बुलाया जाता है, सबको ऐसा मंत्र नहीं पता रहता है। ब्राह्मण का कार्य है तो ब्राह्मण का ही पता है, तो वो करते हैं। तो अगर कोई भाग्यवश किसको नहीं मिले ब्राह्मण या नहीं है, तो हरे कृष्ण मंत्र से सब कार्य पूरा। कहते हैं माधवो माधवो बाची माधवो माधव हृदमी स्मरंती साधव सर्वे सर्व कार्य सुमाधव। तो सभी कार्य में केवल भगवान का नाम सारे, कोई मंत्र पता नहीं, भगवान के नाम लेने से आपका सब कार्य पूर्ण हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है कलयुग के लिए हमें दिया गया है, ये बीज मंत्र है, तो इस मंत्र से सभी कार्य हमारा पूरा हो सकता है। इसलिए हम जो भी उत्सव मनाते हैं, जितना भी उत्सव मनाते हैं, सभी उत्सव के अंत में क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि सभी त्रुटियों को वो पूर्ति कर देता है।
तो आगे ये प्रश्न है कि तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही सभी जगह किया जाएगा, कि उन मंत्रों को क्यों उच्चारण किया जाता है?
ये मंत्र अगर पता है तो शास्त्र में जो मंत्र दिया गया है उसको बोलना चाहिए, उसका भी महत्व है, इसलिए शास्त्र में है। लेकिन महामंत्र सबसे परे है, तो सभी जगह उस मंत्र को, सभी मंत्रों को पूर्ति के लिए, सभी यज्ञ साधन को, सभी कार्य को पूर्ति करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र अंतिम में कोई भी त्रुटि है उसको पूर्ति वो कर देता है।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न?
शुक्राचार्य जब भगवान वामन देव कहे कि यज्ञ पूर्ण कीजिए, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था ना, उसके पहले बलि महाराज को अरेस्ट कर लिए, वामन देव का सब कुछ ले लिए, फिर बाद में कहे कि यज्ञ संपन्न करिए, तो शुक्राचार्य कहे कि आप स्वयं यज्ञ में उपस्थित हैं, तभी यज्ञ पूर्ण होना बाकी रह गया है, आपको तो नाम लेने से ही सब कुछ पूर्ण हो जाता है। मंत्रस तंत्रस्य तच्छिद्रम देश काल वस्तु न सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। तो शुक्राचार्य कहे कि मंत्र तंत्र में जो त्रुटि रह जाता है, देश काल पात्र वस्तु, कोई भी उत्सव हो यज्ञ हो, अगर उसमें कोई वस्तु में कमी रह गया है या मंत्र बोलने में त्रुटि रह गया है, मंत्रस तंत्रस्य तच्छिद्रम देश काल वस्तुना, देश काल का भी दोष है या वस्तु में कोई कमी रह गया है, तो उसके दोष को भगवान का नाम संकीर्तन पूर्ण कर देता है, उसके दोष को खत्म कर देता है। इसीलिए कोई भी उत्सव के प्रारंभ में और अंत में संकीर्तन किया जाता है, और कलि युग में तो नाम संकीर्तन ही ये है। और कई पुराणों में लिखा गया है कि घोर कलि में, कलि का घोर, जब घोर कलि युग का जब प्रहर होगा तो उस समय महामंत्र से ही सारे अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे, सब वर्णन है। एक राधा रमण मंदिर के बहुत बड़े विद्वान थे अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऑडिटोरियम में प्रवचन कर रहे थे तो कहे कि घोर कलि युग में सारे मंत्र लुप्त हो जाएंगे, बोलने वाले नहीं रहेंगे। कहे संस्कृत कोई पढ़ कहाँ रहा है, सब लोग कंप्यूटर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो उस परिस्थिति में महामंत्र के द्वारा ही सारा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा।
धन्यवाद महाराज।
शुक्राचार्य जी इसको पुष्टि किए हैं बलि महाराज के और बामन देव के प्रसंग में। हरे कृष्ण।
प्रजी दी, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड परफॉर्म, हिंदी में प्रयास करता हूँ। तो ये संस्करण करने के लिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, और खास करके जो भक्ति मार्ग में जुड़ा है, जो गृहस्थ भी है और हमारा समाज में भक्ति मार्ग में जुड़ा है, उनको भी ये संस्करण का कितना महत्व है जो भक्ति करने के, क्योंकि हम पढ़ते हैं भगवद्गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं ये अर्जुन पाते थे कृष्ण को, ये लोग हम ये युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर आएगा, वो कुल नष्ट हो जाएगा। अब प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो भक्ति में भक्ति मार्ग में करता है ये सब संस्करण करने के ज्यादा महत्व है नहीं, तो हम ये चीज हम कैसे समझें। तो
अन्यत्र भी कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारे भवे द्विजः, वेद पठे भवे विप्र, ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। तो प्रभुपाद का उन वैष्णव के लिए वो प्रभुपाद वहां बताते हैं जो वैष्णव श्रेष्ठ है। हम अभी वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमको संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण, शुद्ध होते हैं। हमारा भी संस्कार, दीक्षा भी एक संस्कार है, तो यज्ञ होता है वो। हाँ, हम शूद्र थे, अभी संस्कार हुआ द्विजा। हरे कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करने के दीक्षा पुरस्चर्या विधि उपक्षणा करे, जीभा स्वर से आचंडले सकले उद्धारे, कि केवल जीभा स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन दीक्षा पुरस्चर्या विधि उपेक्षा ना करे, इसको जरूरत नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए। लेकिन हम भी संस्कारित क्यों हो रहे, दीक्षा क्यों हो रहा है, वे संस्कार की विधि है। एक गुरु के बिना हम जो मंत्र निष्फलम मता, ये इसका जो फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए संस्कार हर पल में हमको संस्कारित होना जरूरी है, क्योंकि हम जन्म से जात गर्भदान संस्कार से लेकर, गर्भदान संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक संस्कारित व्यक्ति, जो प्रभुपाद जी अन्य जगह में भी लिखे हैं, जो बिना संस्कार का व्यक्ति है वो पशु के समान है। तो संस्कार होने से ही हम शुद्ध होकर एक मनुष्य बनते हैं। तो संस्कार इसलिए जरूरी है कि ये हमारा आगे के जो भक्ति में आने के लिए हमको सहायक बनता है। तो संस्कार इसलिए होता है, विवाह संस्कार, विवाह करने के लिए जो गोत्र मिलाया जाता है, इनका जो देखा जाता है कितना परसेंट मिलता है, इनके जाति गोत्र सब मिला के विवाह क्यों करते हैं, क्योंकि आगे वाले आने वाला संतान जो है उसके ऊपर निर्भर करता है, कि माँ बाप की गुण और व्यक्तित्व के ऊपर आगे का संतान का व्यक्तित्व निर्भर करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो वैष्णव परंपरा में है, जो ऑलरेडी वैष्णव दीक्षा धारण किए है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि संस्कार को करें। आज भी हमारे बहुत आचार्य लोग ये सब संस्कार करने को कहते हैं, जो भी विवाह होते हैं नए नए उनको हम देखें, हमारे गुरु महाराज को भी वो कहते हैं कि गृहस्थों के लिए अलग क्लास होता है, कैसे उनके पति पत्नी का मिलन हो, कैसे ये सब उनके अलग विधि है, तो जिससे आगे के एक वैष्णव संतान आने के लिए हमको ये विधि सब करना पड़ता है, तो जरूरी है। आज भी हमारे मायापुर में गुरुकुल में या मायापुर एकेडमी में ये सब सिखाया जाता है, और वो बोल बताते हैं ये प्राधान्य है इसका, कि जरूरत है, कि हम इतने शुद्ध वैष्णव नहीं है कि हमारा जो भी संतान आ जाए वो पूरा वैष्णव बन के आए। इसलिए वैष्णव संतान को प्राप्त करने के लिए संस्कार बहुत आवश्यकता है, नहीं तो संस्कार के बिना ये समाज पशु के समान, समाज के समान है, इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न? धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पद